विवर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम पुण्य पाप अधिकार कलश 105 105वां कलश चलेगा। ये शिखरणी छंद है जो महावीर अष्टक बोलते हैं, जिस छंद में अपन शिखरणी जानते किसे बोलते हैं, दही में शक्कर मिला दो और फिर उसे ठंडा ठंडा खाओ तो उससे थोड़ी सी नशा आ जाता है, थोड़ा हल्का नशा आ जाता है, उसे शिखरणी बोलते हैं। फिर शिखरणी छंद ऐसा होता है जैसे बोलने वाला थोड़ा नशे में बोल रहा हो, है ना। यदि तत् ज्ञान आत्मा ध्रुव मचल मा भाति भवनम शिव श्याम हेतु स्वयं पियत तत्व इति अतो नत बंध से स्वयं पियतो बंध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वं भवन मन भूत रही बेतम। हिंदी का पढ़े, ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव मोक्ष रूप है, स्वयं अतः मोक्ष हेतु है। ज्ञान रूप जो भगवान आत्मा है कोई परम शुद्ध निश्चय न का विषय, परमार्थ परम पदार्थ, इसकी वर्णन किया था पिछली गाथा में, उसका अनुभव है, स्वयं मोक्ष रूप है और इसीलिए वह मोक्ष का हेतु भी है। क्या कहना चाहते हैं कि मोक्ष में जब जाएंगे तो अनंत काल तक आत्मा अनुभव में ही लीन रहेगा ना, तो उसका हेतु भी वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हेतु तो हो अनुभव रूप और मोक्ष जो मिले फिर वो अनुभव रूप नहीं हो। जगत में ऐसा देखा जाता है कि अभी अच्छी तरह से कमाई कर लो और फिर बुढ़ापे में आराम से खाएंगे, फिर वो कमाई मन बंद कर देंगे। माने जब तक कमाई करते रहेंगे तो वो उसमें आनंद नहीं है, वो आनंद तो बाद में लेंगे ना बुढ़ापे में। तो यहाँ ये कहते हैं कि जब कारण में जब आनंद नहीं होगा तो अंत में आनंद कैसे आएगा। यदि वो कारण आनंद रूप होगा तो मुक्ति भी आनंद रूप होगी। सरला की एक पंक्ति आती है कि संवर तत्व के संदर्भ में कि आत्म हित हेतु वैराग ज्ञान ते लखे आप कु कष्ट दान। आत्मा के हित का हेतु वैराग और ज्ञान है। वैराग माने चारित्र गुण की निर्मलता और ज्ञान माने ज्ञान गुण की निर्मलता। ये दोनों आत्मा के हित के हेतु हैं। तो ये स्वयं सुखरूप होना चाहिए। यदि ये स्वयं सुखरूप होंगे तो ये सुख के कारण होंगे। और हम ऐसा मानते हैं कि जब ये व्रत हम करेंगे ना तब तो थोड़ी तकलीफ होगी, फिर बाद में मजा आएगा। तो मतलब तकलीफ के बीज से और फिर सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा कभी संभव नहीं है। एक बारह भावना है, चाहे दयानंद राय की है, ख्याल है, दुखते सुख सुखते दुख होए और समता चारों गति नहीं होए। पर परे कभी संसार भावना है कि संसार भावना में अभी कभी सुख कभी दुख कभी सुख कभी दुख लगा ही रहता है। बहुत पुरानी बात है, कभी 50 साल पहले होगी, मैं अशोक नगर में रहता था और वहां प्रवचन करता था मंदिर में। तो ये मेरे दादाजी की उम्र के एक पंडित जी थे सोमचंद जी, वो भी प्रवचन पगड़ी साहब थे, पहनते बैठते थे। तो वो ऐसा अर्थ करते थे इसका कि अभी सुख भोगोगे तो बाद में दुखी हो मिलेगा और अभी दुख भोग लोगे थोड़ा तो बाद में सुख होगा। ऐसा कान कार संबंध जोड़ के और उदाहरण देते थे कि विद्यार्थियों से अपन कहते हैं ना, बेटा अभी जरा पढ़ाई करोगे तकलीफ उठाओगे, क्यों खूब अच्छी मेहनत करोगे और घर पर नहीं रहोगे, छात्रावास में रहना पड़ेगा, तो खाना पीना भी घर जैसा तो नहीं मिलेगा ना, तो थोड़ी तकलीफ अभी भोग लोगे तो जिंदगी भर फिर बहुत आराम, अच्छे ऑफिसर बनोगे, फिर आराम से रहोगे, सुख पाओगे। और अभी तो मौज मस्ती की, माने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, खूब घूमे फिरे, खाए पिए, पढ़ाए, तो बुढ़ापे में चपरासी बनना पड़ेगा, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। यानी बचपन में विद्यार्थी अवस्था में दुख भोग लो तो बाद में जवानी में सुख मिलेगा, और अभी सुख के चक्कर में पड़े तो बाद में दुख मिलेगा। मैंने कहा उन पंडित जी साहब से कि पंडित जी इसका अर्थ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने जैन धर्म में तो कहते हैं जो अभी सुखी है वो भविष्य में भी उन्हें सुख होगा, सुख का मार्ग तो सुख का ही है, अभी दुख भोगेंगे तो बाद में सुख मिलेगा, ये कहां का न्याय है? क्या लिखा है ना, देखो सुखते हैं दुख और दुखते हैं स्वर्ग हुए। तो मैंने कहा यहां पर कारण कारण संबंध नहीं है, ये तो एक के बाद एक लगा रहता है, ऐसा अर्थ है। अब स्वाध्याय की प्रवृत्ति कम हो गई प्रथमानुयोग के शास्त्रों की, और पुराने जमाने में जो दौलतराम जी के पद्म पुराण आदि पुराण वगैरह थे ना, वो ढूंढाड़ी भाषा के 200-250 वर्ष पुरानी भाषा के, वो तो आप लोगों ने पढ़े ही नहीं होंगे। उनमें ऐसा आता था, भाषा वही थी ना, कि जैसे बताऊं ना, आदित्य दशरथ, दशरथ ते राम, राम ते लव कुश, ते का मतलब इसके बाद ये हुए, इसके बाद ये हुए, इसके बाद ये हुए, तो वो ते माने उनसे, वो कारण और ये कार्य, ऐसा नहीं किसके बाद कौन हुआ, तो सिर्फ ये बताते थे। वो बताएंगे कैसा, मान लो कि अकबर ते जहांगीर, जहांगीर ते शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब, आप समझे ना। तो मैंने कहा ये तो एक क्रम बता रहे कि संसार का स्वरूप ऐसा है कि कभी दुख होता है कभी सुख होता है, ते माने कारण नहीं है, कि हम अभी दुख भोगेंगे तो बाद में सुख मिलेगा और अभी सुख भोगेंगे तो बाद में दुख मिलेगा, ऐसा कारण कार्य संबंध नहीं है। तो बुद्ध मेरे तिगुनी उम्र के थे, इतना आसान थोड़ी था स्वीकार करना क्या। तो ऐसे ही यहां पर किसके बाद, अपना जैन धर्म तो कहता है कि जो असंवर तत्व है उससे निद्रा और मोक्ष होता है, तो संवर यदि सुख रूप नहीं होगा तो निद्रा में सुख की वृद्धि कैसे होगी और मोक्ष में अनंत सुख कैसे होगा। यानी जो काम तुम्हें अभी करने को कहा जा रहा है वो काम ऐसा नहीं है कि कुछ दिन कर लो फिर बाद में अनंत काल तक तुम उसका मजा लेना, वो तो कहते अनंत काल तक यही करते रहोगे और अनंत काल तक एक मजा लेते रहोगे। एक और बहुत बढ़िया छंद पंडित प्रकाश चंद जी हितेशी बोला करते थे, बहुत श्रोता ऐसे यहां हो सकते हैं जिनने सुना होगा, वो था भैया भगवती दास जी का कि तुम एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा, सुना होगा कि एक समय आत्मा का अनुभव कर तो अनंत काल तक के लिए तुम सुखी हो जाएगा। तो अपन कहते बहुत बढ़िया काम है, तकलीफ भी पड़े थोड़ी तो भोग लेंगे, लेकिन एक समय तो हम करेंगे तो अनंत काल तक सुख भोगेंगे। तो एक बात तो ये है कि वो एक तकलीफ रूप नहीं है, वो एक समय वो भी आनंद रूप है, और अनंत काल तक जो सुख होगा उसी जाति का आनंद आएगा। और ये तो वास्तव में तुम्हें लोभ दिलाया जा रहा है, वास्तव में ये बात सत्य नहीं है। मधु भाई सत्य नहीं कि एक समय आत्मा का अनुभव करेगा और अनंत काल तक सुख भोगेगा, तो दूसरे समय वो आत्मा का अनुभव करेगा कि नहीं, तीसरे समय करेगा कि नहीं, क्यों अंतर मुहूर्त तक करेगा, अंतर मुहूर्त तक करेगा और बाहर उपयोग नहीं आया तो अनंत काल तक करेगा। तो वो तो प्रति समय की कमाई प्रति समय खा रहा है, एक समय की कमाई अनंत समय का खा रहा है। सिद्ध भगवान अभी जो महावीर भगवान सिद्ध सला में है वे उस दिन की कमाई नहीं खा रहे जब उन्होंने यहां आत्मा का ध्यान किया था, वे आज भी आत्मा में लीन है और आधे की कमाई आज खा रहे, ख्याल में है ना। लेकिन वो कहा क्यों, क्योंकि तुझको ऐसा लगेगा इस अनंत काल तक ही करना पड़ेगा आत्म ध्यान, भैया हमें नहीं करना, समझे। इसलिए वो बता रहे कि एक समय की कमाई, लेकिन एक समय तू उस चख लेगा ना तो तेरे को बाहर आना अच्छा लगेगा ही नहीं, कमजोरी के कारण कभी कदाचित बाहर आएगा भी, तो फिर बार बार अंदर जाएगा और एक दफे ऐसी दशा आएगी कि अंतर में जम के रह जाएगा और अनंत काल तक के लिए अनंत सुखी हो जाएगा, है ना। अपेक्षाएं अलग अलग है। तो ये क्या कह रहे हैं कि देखो ज्ञान आत्मा, ज्ञान माने आत्मा, तो कभी बताया था ना, वो आत्मा ध्रुव है, अचल है, ऐसा ज्ञानात्मा शिवस्यायम हेतु, वो मुक्ति का कारण है। स्वयंपि यतः तत् शिव इति, वो स्वयं ही कल्याण स्वरूप है, वो स्वयं ही आनंद रूप है, ये शिव है ना, ये शिव है, इसमें तो शिव लिखा क्यों, संस्कृत है ना, यतास्तत्शिव इति, ये संस्कृत का व्याकरण है कि पीछे यदि सा होता है तो तत्त के बाद ता होता है ना, तो उसे चा हो जाता है और आगे सा को छा हो जाता है, ये नियम है। इसलिए वो शिव का तत् का तत् हो गया और शिव का शिव हो गया, कोई गलती मिलती नहीं है। अतोन्यत बंधस्य, और इससे भिन्न जो भी है वो सब बंध का कारण है। अब क्या गिनाए हम, वृत्तशील संयम गिनाओ, चाहे अशुभ भाव गिनाओ, चाहे शुभ भाव गिनाओ, चाहे शुभ क्रिया गिनाओ, चाहे अशुभ क्रिया गिनाओ, वास्तव में क्रिया तो शुभ अशुभ होती नहीं, ये तो जड़ पुद्गल की परिणति है ना। वो तो उन भावों के साथ उसका यदि सुमेल हो गए तो शुभ भावों के साथ सुमेल हो गए तो शुभ क्रिया कह देते हैं, और अशुभ भावों के साथ सुमेल हो गए तो उसे अशुभ क्रिया कह देते हैं। देखो एक चूहे को दौड़ के बिल्ली ने पकड़ा और आपने एक डंडा उठाकर बिल्ली को मारा, क्यों कि चूहे को छोड़ के भाग जाए, खाए नहीं, तो वो डंडा मारना आपका शुभ भाव है क्या अशुभ भाव, तो वो शुभ क्रिया है क्या अशुभ क्रिया, ख्याल नहीं ना। किसी को मारना तो अशुभ ही मानी जाएगी, लेकिन यहां वो शुभ हो गई। दो भाई भाई बहन हैं, वो बड़े भाई ने छोटे भाई को चांटा मारा, तो मम्मी ने आकर उसको एक चांटा मारा जोर से, क्यों, तो जैसी गलती बच्चे ने की वैसी गलती माने की। यदि बच्चे को भाई को मारने का पाप लगेगा तो माँ को भी उसको मारने का पाप लगेगा कि पुण्य, क्योंकि माँ ने तो छोटे भाई को बचाया है, उसका तो वहां रक्षा का भाव है, तो वो ही मारने रूप क्रिया यदि बचाने का भाव हो तो वो अहिंसा क्रिया हो जाती है, शुभ क्रिया हो जाती है, और मारने का भाव हो तो वो ही क्रिया अशुभ हो जाती है। क्रिया तो एक सी है, हाँ, सिंह सूकर का उदाहरण है। एक मुनिराज पर सिंह आक्रमण कर रहा था तो वो सूअर उसे बचाने के लिए आ गया और दोनों ही लड़ते लड़ते मर गए, एक स्वर्ग गया एक नरक गया, दोनों ही मर गए ना। इसका क्या अर्थ हुआ कि शेर ने सूकर को खूब मारा तब तो सूकर मरा, लेकिन सूकर भी मारने में पीछे नहीं रहा शेर को, नहीं तो शेर मरता कैसे, क्यों, सूकर यदि शेर पर आक्रमण नहीं करता तो शेर भी मरता नहीं, बल्कि सूकर ने कुछ ज्यादा ही आक्रमण किया, क्योंकि शेर के तो नुकीले दांत होते हैं, पंजे नुकीले होते हैं, तो आसानी से मार सकता है, इसके तो ऐसे होते नहीं है, तो इसे तो और ज्यादा करना पड़ा होगा तब मारा शेर को, समझ गए ना। मारने की क्रिया दोनों बिल्कुल एक सी की, और तो और गुस्सा भी दोनों को एक सा आ रहा था, क्यों, गुस्सा तो कसाय है, खोटी चीज है, वो तो पाप ही है ना, तो गुस्सा करने से तो पाप बंद होना चाहिए ना, तो सुरक कैसे गया वो, अभिप्राय उसका मुनिराज को बचाने का है, तो अभिप्राय से वो पुण्य पाप होता है ना, तो क्रोध से पुण्य पाप होता है भाव से, और न क्रोध नामक कर्म के उदय से, और न मारने रूप क्रिया से, है ना। तो इस क्रिया को क्या करें, ये तो अभिप्राय किससे शुभ अशुभ हो जाती है। वास्तव में क्रिया का तो कोई पुण्य पाप बनता ही नहीं है। जगत का न्याय और जैन धर्म के न्याय में बहुत अंतर है, मोर कोणी का अंतर है। जरा तुम लोग सोचना, छोटे बच्चे बच्चे बैठे यहां पर, गवर्नमेंट में के कानून के हिसाब से कोई किसी को गोली मारे और वो मर जाए, और अदालत में सिद्ध हो जाए कि इसकी गोली से मारा तो वो मर गया, तो फांसी की सजा लगेगी, है ना। और यदि गोली बगल से निकल जाए और वो नहीं मरे तो कुछ भी नहीं होगा, एक महीने की भी सजा नहीं होगी। क्यों? और जैन धर्म के हिसाब से उसने गोली चलाई, वो चाहे मरे चाहे ना मरे, उसे बिल्कुल दोनों में एक सा ही पाप बंद होगा। क्या अर्थ हुआ इसका? क्योंकि गवर्नमेंट तो वो मरने रूप क्रिया को ही अपराध मानती है। यदि वो नहीं हुई तो अपराध किया ही नहीं, दंड काएगा। वो भाव पे अपराध मानती ही नहीं, अभिप्राय पे अपराध मानती ही नहीं। वो तो कहते हैं कि अपराध हुआ ही नहीं, यदि वो नहीं मरा तो अपराध हुआ ही नहीं। आदमी इतना बढ़िया स्वस्थ जिंदा है और तुम इसके मारने के अपराध में किसी को फांसी पे चढ़ा दो, संभव है? बोलो, किसी भी कानून से। इसका मतलब गवर्नमेंट सिर्फ पुद्गल की क्रिया को ही अपराध पाप मानती है, और जैन धर्म कहता है कि वो तो उसकी आयु कर्म था इसलिए बच गया, तूने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। उसके मरने और नहीं मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो पाप बंद हो गई, और अभिप्राय से उससे भी अनंत गुणा। मैं तो एक ऐसा उदाहरण देता हूं कि एक आदमी ने गोली चलाई और गोली के चलने से वो सामने मर गया, अब उसको एक किलो पाप लगा। पाप यदि कोई तोल तोल के नहीं लगता है, लेकिन अपने अपने समझने के लिए उदाहरण के लिए बात करते हैं कि उसे क्या लगा, एक किलो पाप लगा। अब हमें पाप का बंटवारा करना है कि कैसे लगा, तीन जगह बांटना है। एक तो वो जी मरा, इसका कितना पाप, एक मारने का भाव किया, इसका कितना पाप, और एक मैं मार सकता हूं ऐसी मान्यता की अभिप्राय, तो उसका कितना पाप। अब गवर्नमेंट के हिसाब से कहेंगे तो मरा इसका ही पूरे है 1000 ग्राम पाप इसका ही है, भावों से कुछ लेना देना नहीं है, और अभिप्राय से तो कुछ मतलब ही नहीं है वहां। और जैन धर्म क्या कहता है, वो मरा इसका 1 ग्राम भी पाप नहीं, और मारने का भाव हुआ उसका 1 ग्राम, 1000 ग्राम में 1 ग्राम पाप, और अभिप्राय का 999 ग्राम पाप। लोग कहते नहीं नहीं ये तो बहुत अन्याय है, इतना कैसे। अरे भाई ये तो मैंने 1000 गुना ही बताया ना, शास्त्र में तो अनंत गुणा लिखा है। क्या ये तो बहुत कंसेशन की बात है तुम्हें समझाने के लिए, यानी अभिप्राय का अनंत गुणा फल, और भाव का अनंत मां भाग, और क्रिया का रिंच मात्र भी नहीं, ऐसा है। हम भी लगा ना, श्रीमंद ने लिखा तेरी जड़ थी रहा ना, क्या कोई क्रिया जड़ थी रहा, यही क्रिया जड़ है कि नहीं। हम तो वो जानते थे कि वो व्रत उपवास करता है, खूब अच्छी तरह से करता है, पूजा पाठ करता है, और ये मानता है कि मैं धर्म हूं, तो उसे हम क्रिया जड़ कहते हैं। और शुष्क ज्ञान मां कोई, और पढ़ता लिखता रहता मैं तो बहुत धर्मात्मा हूं, शुष्क ज्ञान मां हो गया। अरे क्रिया वो सब क्रिया ही तो है ना, कि जो गोली से वो मरा और इसको हमने उसे अपराध माना, तो वो क्रिया में जड़ है, वो जो कुछ मानता है वो क्रिया के प्रति ही समर्पित है। क्रिया जड़ का मतलब समझे, चाहे शुभ भाव में हो चाहे अशुभ भाव में हो, वो क्रिया से ही धर्म अधर्म माने, वो क्रिया जड़ है। और शुष्क ज्ञान में माने कौन, कभी वगैरह जान ली, कोई जानकारी। श्यामचंद भाई अपने भाषण में बात कहा करते थे, श्यामचंद भाई का श्रोता कोई है क्या? हाँ हाँ, देखो बैठे, देखो श्यामचंद भाई के श्रोता बैठे हैं। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहते थे कि सारा जगत क्रिया जड़ हो गया है ना, क्रिया क्रिया में ही मानता है, वो अंदर की बात में अभिप्राय की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं है, ऐसी उनकी मैं वो समझाते थे। तो वो ये कह रहे हैं, अतो अन्यत बंधम समपी अतो बंध इति तद। अब हम क्या कहें कि बस जो आत्मा आत्मा में लीन हुआ ये अबंध है, और बाकी जो कुछ भी हो वो सब बंध है। शुभ भाव होगा तो शुभ बंद हो जाएगा, अशुभ भाव होगा तो अशुभ बंद हो जाएगा। शुभ अशुभ के में भी बहुत चक्कर है जो मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन तत्व ज्ञानात्मत्वम भवनम अनुभूति विहितम, इसलिए ज्ञानात्मक जो आत्मा की अनुभूति है वो ही करने योग्य कार्य है। देखो भाई, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हेमचंद जी। इसका जो मैंने पद्यानुवाद किया है, इसकी अंतिम पंक्ति पर मैं स्वयं ही रीझ रहा हूं, बहुत अच्छी लगती है मुझे। क्या है? इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। पढ़ता हूं ऊपर से, ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव है, मोक्ष रूप है स्वयं अता वह मोक्ष हेतु है, शेष भाव सब बंध रूप है बंध हेतु है, इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। अत्यंत सशक्त शब्दों में, जितने सशक्त शब्द संस्कृत में भी नहीं है, मैं सीधी हृदय को चोट करती है। ऐसे वो एक 38वां काव्य है ना, उसमें नहाइए नहाइए आता है, वो सारा लोग एक साथ आकर इसमें नहाइए, मतलब है ना, कलश जीवंत
अनुवाद,
जीवंत अनुवाद है, जीवंत अनुवाद है, समझे ना। इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है, सीधी बात, अनुवाद नहीं लगाना। क्यों है? इसीलिए अनुभव से बंध नहीं है, और अनुभव नहीं हुआ तो बंध ही बंध है। अब किसका है, पुण्य का है कि पाप का है, कि अल्प आयु है कि इस ज्यादा स्थिति पड़ी है क्या अल्प स्थिति पड़ी है, उससे कुछ फर्क हमें उससे कोई लेने देने का नहीं है। धर्म तो अनुभव करना है, आत्मा का अनुभव है, इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। देखो, इस कलश में यही कहा गया है कि ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव अचल निज भगवान आत्मा का अनुभव ही मुक्ति रूप है, वही मुक्ति का मार्ग है, वही मुक्ति है और वही मुक्ति का मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी स्वाशुभ आचरण है वे सभी बंध रूप हैं, बंध के कारण हैं। यही कारण है कि जिनागम में आत्मा के अनुभव की प्रेरणा दी गई है। अब इसी छंद का भावानुवाद बनारसी दास जी कैसे कहते हैं? देखो, बनारसी दास जी को मैंने हमेशा भावानुवाद शब्द लिखा है, और जो मैंने अनुवाद किया तो उसको मैंने उसका पद्यानुवाद किया है। कि क्यों वहां क्यों पद्यानुवाद लिखा, इसमें क्यों भावानुवाद लिखा? हमने तो उस छंद से पीछे लगकर और उसी का वहां अर्थ किया है। पर तो बनारसी दास ने मालूम क्या किया, उन्होंने तो पूरी कलश टीका पढ़ी। देखो, उन्होंने कलशों का पद्यानुवाद तो किया, गाथाओं का नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कलश टीका पढ़ी थी, उसमें गाथाएं थी ही नहीं। उनका स्वाध्याय का आधार कलश टीका थी। कलश टीका पर गुरुदेव भी बहुत रीझे हैं, है ना। तो बुक बनारसी दास जी असली कवि थे, हम कवि नहीं है, सच्ची बात कह रहा हूं। बनारसी दास जैसी बात हम में नहीं है, असली थे। मैंने क्या कि वो उन उस समय सार के कलश को पढ़कर और उसके भाव अपने अंदर में रम जाते थे, तो वो कोई कलश से बंधते नहीं थे। कि 10 कलश पर उनने एक छंद नहीं लिखा, 10 गाथाओं में आता है ना, और कभी कभी एक छंद के 10-10 कवित्व लिख दिए। जहां उनका मन रम गया उन्होंने लिख दिया बस। और उन्होंने ऐसे क्रम से नहीं लिखे जैसे हमने क्रम से लिखे, वो तो लिखते गए जहां मन लगा, जो गाथा पे मन लगा जो वहां, ऐसे ऐसे वो छंद इकट्ठे होते गए। आप जानते हैं बनारसी दास जी उस वक्त कितने लोकप्रिय कवि थे। जैसे आजकल के छोकरे गलियों में सिनेमा के गाना गाया करते हैं ना, गुनगुनाते रहते हैं दिन भर स्नान घर में नहाते वक्त यहाँ वहाँ, ऐसे बनारसी दास के इन कवित्वों को आगरा की गलियों में लोग ऐसे गुनगुनाया करते थे, गाया करते थे। हैं? वो श्रृंगार रस की बात नहीं, वो नहीं, ये भी ये अध्यात्म के लोग गाते होंगे, वो श्रृंगार के लोग गाते होंगे, लेकिन उन्होंने उसको यहां पे इकट्ठा कर दिया। फिर वे इकट्ठे करते करते सैकड़ों छंद हो गए। फिर उन्हीं ने अथवा उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी शिष्य ने उन्हें संकल्प किया और आगे पीछे कौन कहां कैसे होना चाहिए ना, और वो व्यवस्थित किया। ऐसे हैं, इसलिए मैंने भावानुवाद बोलता हूं। लेकिन अभी बात आ गई तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि वो व्यवस्थित भी उनने ही किए थे। क्यों अब भगवान जी किस आधार पर कहा जा सकता है? उसका आधार ये है कि उन्होंने फिर शुरू में नाममाला लिखी। नाममाला समझते हैं, इस शब्दों के अर्थ लिखे कि पुण्य, इन इन शब्दों को पुण्य कहते हैं, इन इनको पाप कहते हैं, इन इनको, क्योंकि उन उन शब्दों का प्रयोग उन छंदों में उनने किया था। तो बाद में ये अनुभव किया कि इन शब्दों का अर्थ तो जनता जानती नहीं है, तो इसलिए जो खास खास शब्दों की उन्होंने पुण्य किसे पुण्य के लिए मैंने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है वो सब उन्हें नाममाला बना दी शुरू में। और कहा पहले तुम इसे पढ़ो तो बाद में मेरे छंदों का अर्थ समझ में आएगा। इससे मालूम पड़ता है कि उन्हें उन्हें संकलित किया और उन्हें लगा कि लोगों की पढ़ नहीं पाएंगे, समझ में नहीं आएगा, तो उन्हें पहले नाममाला बनाई। और भगवान पारसनाथ की स्तुति मंगलाचरण में करी, कोई जरूरी नहीं कि उन्हें शुरू में मंगलाचरण बनाया हो, बीच में भी बनाया हो सकता है, लास्ट में भी बनाया हो सकता है, और समय सार से कोई संबंध ही नहीं हो। उनके यहां जहां वो बैठ करके लिखते थे वो पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक थे। वहां ऐसा हर एक का है कि जिस मंदिर घरों में तो भैया वो संभव नहीं था लिखना, पुराने जमाने में घरों में संभव नहीं था, क्योंकि घर में बहुत बाल बच्चे ज्यादा ही के 10-8-10 होते थे, चाचे पे बहुत होती थी, और वो ऐसे शास्त्र नहीं थे, कागज नहीं थे, वो ताड़ पत्रों पे ऐसे करके ऐसे लिखना पड़ता था, उन्हें बहुत संभाल के रखना पड़ता था बैठ के, ख्याल में आई ना। तो वो मंदिरों में ही वो व्यवस्था थी, तो वहां जाके बैठ के लिखते थे। तो जो भगवान सामने होते थे एक छंद उसका बना दिया, और उन्होंने वही छंद उसको नीचे रख दिया। अपने साथ भी ऐसा होता है, जैसे हमने नयचक्र लिखा तो नयचक्र का मंगलाचरण शायद अधूरा नयचक्र बन गया होगा, 200-300-400 पेज लिखे गए होंगे उसके बाद बनाया होगा। धर्म के दशक की किताब का तो मंगलाचरण वो 3 एडिशन छप गए उसके बाद लिखे, कुछ नहीं है वो तो, उसका ये मतलब नहीं है वो तो, जहां वो इस तरह से उन्होंने नाटक समय सार बनाया। तो देखिए आप पढ़ते हैं इसी छंद का, ये तो हमने सेट किया, हमने माने हम जैसे किसी उनके शिष्य ने सेट किया है, ऊपर ये छंद है तो यहां पर ये रख दो, कभी कभी पूरा नहीं मिलेगा। मोक्ष स्वरूप सदा चिन्ह मूर्ति बंधमयी कर तूत कही है, जावत काल बसे जहाँ चेतन तावत सूरत रीत गही है। आत्म को अनुभव जब लो तब लो शिव रूप दशा निवही है। अंध भयो करनी जब ठानत बंद व्यथा तब फैल रही है। ये कई छंदों को समेट रहा है अपने आप में। क्या है? मोक्ष स्वरूप सदाच निमूरत। चैतन्य आत्मा भगवान मोक्ष स्वरूप है। अब मोक्ष स्वरूप तो मुक्त और पर्याय है और चैतन्य तो त्रिकाली ध्रुव है, क्यों? लेकिन वो ये कहते हैं कि जैसा मोक्ष पर्याय में ये भगवान आत्मा प्रकट हो गया है, स्वभाव की अपेक्षा अनादि से अनंत काल तक वैसा ही है, इसका नाम है मोक्ष स्वरूप। मोक्ष स्वरूप सदाच निमूरत और बंध मई करतूत कही है। अब ये करतूत है, ये कर्ता कर्म अधिकार के प्रसंग में कहीं लिखा होगा, वो उनके दिमाग में घूम रहा होगा कि जो करने का भाव है तेरे को। करतूत जानते किसे बोलते हैं? ये बुंदेलखंड वाले सब जानते होंगे। क्यों? तुम्हारे बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप, बेटा हम तुम्हारी करतूत से सब जानते हैं। मैंने अच्छे अर्थ में नहीं, अच्छे काम के अर्थ में करतूत नहीं कहते हैं, बुरे काम के अर्थ में करतूत शब्द का प्रयोग है। क्या है गुजराती में ऐसा ही है? क्या बोलते हैं करतूत? बोलते वही अर्थ में कि हम तुम्हारी करतूत बहुत जानते हैं, समझे ना? तो ये कहते वो दुनिया में जो भी करने का भाव है वो करतूत है, माने वो अच्छी चीज नहीं है। उस शब्द में ही उनने उसके प्रति हे बुद्धि भर दी। इसलिए मैं कहता हूँ कर्ता कर्म का अधिकार का असर इस छंद पे है, क्योंकि मूल में तो अपन देख रहे थे कि वो बंद का हेतु है और बंद स्वरूप है ना? वो मोक्ष का हेतु है और मोक्ष स्वरूप है। अब एक करतूत की तो कोई बात ही नहीं थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भावानुवाद है, आप उस पंक्ति से संस्कृति पंक्ति से चैट नहीं सकते हो। मोक्ष स्वरूप सदाच निमूरति बंध मई करतूत कही है। जावत काल बस जहाँ चेतन तावत सो रस रीति गही है। अब जावत काल जितने समय तक चेतन जहाँ रहता है, अब ये जहाँ कहाँ क्षेत्रवासी तब समझेंगे कि देवलाली में रहता है कि जयपुर में रहता है, क्यों? क्यों ये जहां वो जहां वाला नहीं है, जिस भाव रूप से परिणमित होता है। जब आत्मा जिस भाव रूप से परिणमित होता है तब आत्मा उस भाव का कर्ता कहा जाता है। क्या? जावत काल बसे जहां चेतन तावत सो रस रीति गही है। तब वो उसी रूप परिणमित होता है। श्रृंगार में बसेगा तो श्रृंगार रूप परिणमित होगा, ही कह रहे हैं, है ना? आत्म को अनुभव जब लो, जब आत्मा आत्मा का अनुभव करता है तब लो शिव रूप दशा निवही है, तब समझ लो वो मोक्ष में ही है। अब चौथे गुण स्थान वाले को मुक्त कहते हैं ना, वो आत्मा का अनुभव कर रहा है तो समझ लो मोक्ष में ही है। आत्म को अनुभव जब लो तब लो शिव रूप दशा निवही है। शिव रूप दशा का निर्वाह हो रहा है और अंध भयो करनी जब ठानत बंद व्यथा तब फैल रही है। और अंधा हो गए कर्ता बनता है तो बंद होता है। अब इसमें एक चक्कर है, पहले पढ़ लेता हूं इसे, अपना अर्थ समझ लेते हैं, फिर मैं बाद में बताऊंगा। चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा सदा मुक्त स्वरूप ही है और कर्तूत अर्थात सुभाषुभ भाव रूप विभाव परिणति बंद स्वरूप है। यह चेतन जितने काल जहां रहता है उतने काल तक उसी के रसरीत को ग्रहण करता है, उसी के रसरूप परिणमित होता है। जब तक आत्मा के अनुभव में रहता है तब तक चेतन की मुक्त दशा का निर्वाह होता है और अंधा होकर जब कर्तृत्व में आ जाता है तब बंधन के चक्कर में पड़ जाता है, बंद की व्यथा फैलने लगती है। इस प्रकार इस कलक में दो टूक शब्दों में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि मुक्ति का मार्ग एकमात्र आत्मा का अनुभव है, आत्मानुभूति है, शेष शुभाशुभ भाव पुण्य पाप बंध के कारण है। अब मैं आपसे जो बात कहना चाहता थोड़ा उस पर विचार करते हैं। ये करतूति जो बात चल रही है, ये कौन से गुणस्थान की बात है? ये मिथ्यात्व गुणस्थान की बात है कि पांचवें छठवें चौथे पांचवें छठवें गुणस्थान की बात है? तो समझ में आया कि नहीं? ये क्यों प्रश्न खड़ा हो रहा है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जब तक वो आत्मा का अनुभव है तब तक तो वो शिव मोक्ष रूप है, और जब वो अंधा हो करके करनी ठानता है तो बंध व्यथा फैल रही है, तो अंधा हो गए करनी, तो ये हम सब में ज्ञानी को कैसे मान लें? ये तो मिथ्यात्व की भूमिका में आ गया ना। एक अर्थ तो ऐसा भी हो सकता था कि भाई जब वो सुभाषुभ भाव में आता है तब सुभाषुभ भाव रूप परिणमित होता है। प्रतिदिन साल की शुरू शुरू की गाथाओं में लिखा है, शुभोपयोग परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभोपयोग परिणत आत्मा शुभ है, शुद्धोपयोग परिणत आत्मा शुद्ध है। लिखा क्या लिखा? तो ज्ञानी के भी हो सकता है, और यहां जो बनारसी दास जी कह रहे हैं वो तो प्योर बिल्कुल ठेठ अज्ञानी की बात लगती है, जबकि मूल कलश में आप जाके देखो, अतो अन्यत बंधस्य स्वयमपि यतो बंध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वम् भवत अनुभूति विहितम्। वो कहते हैं कि जब शेष भाव सब बंध रूप हैं, वो बंध के हेतु हैं, तो वो तो ज्ञानी को भी बंध होता है ना, जो सार्वत्र मोहे के उदय से वहां का ही संकेत लगता है। लेकिन जब बनारसी दास जी बात करते हैं तो सीधे वे मिथ्यात्व में ले जाते हैं, इसलिए मैं भावानुवाद बोलता हूं, क्योंकि उन्होंने तो भाव ग्रहण किया था। अब ऐसा थोड़ी कि एक मिनट में होता है, शुद्धोपयोग में हो गए, सम्मान दृष्टि हो गए, फिर एकदम मिथ्या दृष्टि हो गए। माने जब वो बाहर आता है तो कर्तृत्व के भाव रूप तो परिणमित हो सकता है, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि रूप परिणमित हो जाए गारंटी की बात नहीं। ये माता बहनों की समझ में कुछ आता है कि नहीं, कि कठिन लगता है? अरे गुरुदेव के सब श्रोता हैं, है? और देवलाली में भी ऐसी बात नहीं करेंगे तो फिर कहां करेंगे, है? यानी एक करतूती कह रहे वहीं ये आ गया, क्योंकि सम्यक दृष्टि के शुभ और क्या अशुभ भावों को भी करतूती नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि न्याय के भोग है ना, भूमिका के अनुसार जो होते हैं वैसी मर्यादा है ना। देखो कोई दूसरे की मां में इनकी छेड़खानी करे तो उसे हम गुंडागर्दी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कहते थे? लेकिन कोई विषय कसाय की प्रवृत्तियां सम्यक दृष्टि जीव के अपनी मर्यादा में न्याय की, अपनी पत्नी के साथ अथवा अपने घर में खाने पीने शुद्ध सात्विक खान पान के साथ यदि वो वही बात करे तो उसको हम गुंडागर्दी थोड़ी कह सकते हैं। क्यों? तो अंतर समझ में आया ना, मैं ज्यादा खोलना नहीं चाहता। अभक्ष के भक्षण में जितनी आप प्रवृत्ति करें उसको हम जैसे भ्रष्टा कह सकते हैं, आप बादाम का हलवा शुद्ध घी का बनाया और उसको भी प्रेम से खाएं तो उसको फिर हम वहां भ्रष्ट थोड़ी कह सकते, मिथ्या दृष्टि थोड़ी कह सकते, मांस मदराग में कह सकते हैं। तो ऐसे ही अन्याय का भोग परिस्थिति आदि के विकल्प में कह सकते हैं गुंडागर्दी, लेकिन वही अपने घरों में वही व्यवहार हो जो न्याय की मर्यादा के भीतर, तो उसको तो गुंडागर्दी नहीं कहा जा सकता है, तो करतूत उसे कैसे कहा जा सकता है? तो जब वे करतूत की बात करते हैं तो उनका ध्यान वो मिथ्यात्व की भूमिका में है। और वो ये बात है, वो जो फिर से खतरनाक बात कहता हूं, समय हो गया कि देर अभी हो तो गया है, लेकिन बात तो कही दू पूरी। जे जे पंडित छयो उपसमी तिनकी अवस्था तो लोहार की संन्यासी है, क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, क्षण में मिथ्यात्व क्षण में ज्ञान कला जागी है। क्या कह रहे कि क्षयोपम सम्य दृष्टि इनकी, तो ये जे जे पंडित उपसमी और उपसम सम्य दृष्टि तक, उनकी अवस्था तो लोहार की संदासी जैसी है। लोहार होता है ना, लोहे का काम करता है, वो संदासी मानो उसकी वो संसी जिससे वो गर्म लोहा पकड़ता है, तो गर्म लोहा को पकड़ने के लिए वो आग में जाता है, निकाल के लाता है, اور وہ گرم ہو جاتی ہے تو پانی میں ڈالتا ہے. تلوار کی سنڈاسی جیسے ایک کھن میں پانی میں جاتی ہے ایک کھن میں آگ میں جاتی ہے, ایسے ہی اپسمی اور چھوپسمی پنڈت مانے گیانی جیت پنڈت کا گیانی تو سر بتایا تھا نا, ایک کھن میں متھیات میں اور ایک کھن میں گیان کلا بھاسی ہے سمنا رشتی ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے سامنے سینکڑوں بار وہ سمنا رشتی ہو جائیں اور متھیا رشتی ہو جائیں. ایسا لگا وہ یہ کہہ رہے وہاں گئے انوبھو میں سمنا رشتی اور یہاں متھا تمہیں آگے, ایسا ہو سکتا اسی کے لگ سے لکھاؤ انہیں اس میں کون سی گدب بات ہے. اب یہ جو پرسنگ ہے اس کے ساتھ میری ایک کہانی جڑی ہے, وہ کہانی بھی میں سنا دیتا ہوں. جب ہیرا لال جی ہیں نا اپنے بھاو نگر والے, وہ ان کا ہاتھ کٹا تھا, تب وہ جے پور کے پاس پھلیرا میں کٹا تھا اور پھلیرا سے ہمیں پتا چلا تو وہاں سے ہم نے سب ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا اور رات کے دو بجے وہ آئے تو سارے ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا, کم سے 20 بوتل اپنے ودیارتھیوں نے سب نے مل ملا کر, اس میں جی ابھے کمار جی جتیس بھائی وغیرہ سب تھے اور انہوں نے سب دیا, علاج ملاج ہوا. تو وہ وہاں مہینوں رہنے کا پرسنگ بنا تھا سچی بھائی کا بھی وہاں, اور وہاں رہتا تھا پرسنگ منا تھا تو سب چرچا ہوتی تھی. تو چرچا ہوتی ہوتی ایک دن انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ گرودیو شری کو سمنا دشتی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, نہ معلوم ان کے پیٹ میں کہاں سے پرشن کھڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ ایسی بات کیا کر رہے آپ, یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم نے جو بھی انہیں دیکھا ہے اپنے جیون میں اور جو بھی ان کے شاستروں کا ادھین کیا ہے منن کیا ہے اس سے ہمیں رنت ماتر بھی اس میں کوئی شنکا نہیں لگتی ہے کہ وہ کوئی سمنا دشتی نہیں ہے, ہیں گارنٹی سے. نہیں نہیں آپ پکی بتائیے, پکی کہیے, پکی پکی کیا کیا پکی کہیں. میں نے ان کو کہا کہ پکی تو سروگیہ بھگوان کہہ سکتے ہیں, ہم تو اپنے انومان سے اور اسی آدھار پہ ہی تو کہہ سکتے ہیں نا, ہمیں تو کوئی شنکا نہیں ہے, لیکن جیسی پکی کی بات تم کر رہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. انہیں کیوں تو ہم نے یہ چھند سنایا انہیں کہ جے جے پنڈت اپ سمی سیوپ سمی تین کی اوستھا لوہار کی سداسی ہے, کھن مائی آگ مائی کھن مائی پانی مائی کھن میں متھارت کھن میں گیان کلا واسی ہے. اب 20 دفعے ایک آدمی کا ایسا ہو جائے چھائے سمجھ دشتی تو ہے نہیں, تو ہم ایک ایک منٹ میں کیسے نرنے کر سکتے کسی کے بارے میں کہ یہ سمجھ دشتی ہے کہ متھا دشتی ہے, یہ تو سروگ بھگوان ہی بتا سکتے ہیں نا. بس انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا اور آ کر گرودیو شری سے نمک مرچ لگا کر کے کہا یہ سنکٹ ہم آج ہی نہیں جھیل رہے ہیں, گرودیو کے سامنے بھی بہت جھیلے ہیں, پکے ہو گئے جھیلتے جھیلتے کیسا بھی آپ کو سمنا دشتی نہیں مانتے کیوں. انہوں نے کہا چپ رہو, جب بھی آنے والے ہیں 15 دن بعد آپ تو ان سے ہم بات کر کے دیکھیں گے, ابھی کوئی بات کوئی چرچا نہیں کرے گا یہاں. انہوں نے اسٹے آرڈر لگا دیا گرودیو سنگھ نے. اب ہم پہنچے تو انہوں نے ہم کو اکیلے میں بلا کے کہا کیا میں نے سیدھا تو نہیں پوچھا, وہ تو بہت گرودیو تو بہت وچکشن پرس تھے, وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ بہت ترکیب سے بات کرتے تھے تو ہم سمجھ گئے کہ کیا کہہ رہے گرودیو. تو ہم نے کہا گرودیو شری یہ وہاں پر آئے تھے, انہوں نے ایسی چرچا ہم سے کی تھی تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ چھند نکال کے اور اس کا پورا ارتھ گرودیو شری کو بتایا کہ جب ہم سے کہہ رہے گارنٹی دو گارنٹی دو, تو میں نے کہا کیولی کے علاوہ کون گارنٹی دے سکتا ہے, اور آپ ہمیں مانتے ہو کہ ہم سب میں دشتی ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے, تو ہم متھیا دشتی کیسے گارنٹی دے کسی کے, وہ اپنی سدھا بتا سکتا ہے کہ ہمیں پکا وشواس ہے کہ وہ سمے دشتی ہیں, لیکن گارنٹی کی بات کیوں کرتے ہو. اور ہم نے جب کھول کے یہ بات بتائی تو گرودیو نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی دقت نہیں, صحیح بات ہے, تو آگم کی بات ہے. ایک کھن میں ہم کیسے نرنے کر سکتے ہیں کیوں, ابھی ہم پرچن کر رہے, پرچن کرنے کرنے میں 10 دفعہ سمے دشتی ہو جائے اور 10 دفعہ بیچ میں متھیا دشتی, ایسا بناج داد کر ہے, یہ شاستری لکھی بات ہے, ان کے گھر کی بات نہیں ہے کیوں. یہ ہم کو تو یہ ویوہار سے موٹا استھول ہی نکی کرنا پڑے گا, कि जब उनकी वाणी में कहीं कोई स्खलन नहीं है, उनकी रुचि बिल्कुल पक्के अध्यात्म की है, त्रिकाली ध्रुव पर इतना भजन है, तो वे गारंटी से ख्याल में सम्यक दृष्टि थे और थे। और बैठी बैठ गारंटी कौन दे? बोली ऐसी एक दफा चोट नहीं छाया की। गुरुदेव फरमाया करते थे कि बहन श्री के ज्ञान में आया है कि एक जोड़नु छायक होता है। सुना सब सम्यक दर्शन, जोड़नु छायक सम्यक दर्शन होता है, लेकिन मुझे आगम का प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए मैं कहता नहीं हूं, ऐसा कहते थे। प्रवचन में भी अभी आपने कभी सुना हो टेप में कि जोड़नु छायक लेकिन आगम में नहीं मिलता है? तो मैंने कहा गुरुदेव आगम में तो है कि कहाँ आए? वो तो इतने खुशी हुई इतने कि जब भी आज निकाल के बताएंगे तो वो तो खोजते थे। तो मैंने कहा कि शास्त्र में ये लिखा है कि सर्वोत्तम सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ जा सकता, आवक जावक जानते हैं आप, कि मिथ्यात्म में भी जा सकता है, छायक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, उपशम सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, आता कि नहीं आता? वो कहाँ कहाँ जा सकता है? तो जब छायक सम्यक दृष्टि हो सकता है तो जो क्षयोपम सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दृष्टि होगा उसका अर्थ यह हो गया कि उसका क्षयोपम सम्यक दर्शन छायक में जुड़ने वाला है, इसलिए जोड़ना चाहे। हाँ ठीक सही, ये तो प्रमाण है बिल्कुल, ये तो है करुणा नियोग में लिखा है, इसमें क्या है, ये तो सत्य बात है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सारा जो व्यवहार ज्ञान होता है, व्यवहारिक कथन होता है वो, और ये आगम का कथन होता है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। व्यवहार व्यवहार के हिसाब से चलता है और आगम के हिसाब से वो बात जैसी है वैसी ही हरेक को माननी पड़ेगी और कहना पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं इस छंद में कि उन्होंने करतूत शब्द का प्रयोग किया, इसलिए वे मिथ्यात्व गुणस्थान की बात कर रहे हैं। और गाथा में से ऐसा नहीं निकलता है कि मिथ्यात्व शुभ भाव में भी आए अशुभ भाव में भी आए तो अभी वो भ्रष्ट हो गया, शुभ भाव रूप परिणत हो रहा, ऐसा हम कह। एक कर्तृत्व के विकल्प वाला और एक कर्तृत्व की बुद्धि वाला, तो इन्होंने बनारसी दास ने कर्तृत्व की बुद्धि वाला पकड़ा और वो मूल में मेरे हिसाब से गुरुदेव के हिसाब से भी और सबके हिसाब से वो कर्तृत्व के विकल्प वाली बात है। बाकी